Lo considero. Eso es lo de Mario, ya se soñó.
Cartel. One cushion you can give, yeah? Cushion? Cushion? Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandan Braja Jana Ranjana. Yashoda Nandan Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram,
Krishna Balaram Jai Krishna Balaram Jai Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundarade Jai Gauranitai 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 Jai Gauranitai Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Hitaya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitaya Gaura Hari Bol
Jai Om Vishnu Pad Paramhansa Parivrajaka Acharya Ashtotra Sat His Divine Grace Abhay Charanar Vind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jai Om Vishnu Pad Paramhansa Parivrajaka Acharya Ashtotra Sat His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki Jai Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Radha Shyam Sundar ki jai, Nitai Gaur Premanande, Samaveta Bhakta Vrind ki jai, Samaveta Bhakta Vrind ki jai, Samaveta Bhakta Vrind ki jai, Shri Shri Guru Gauranga ki jai. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Punilikambyanu Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Spapadantikam Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare 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 Krishna Srila Rupa Goswami ko Chaitanya Mahaprabhu ki shikshaen Shri Chaitanya Charitamrita ke Madhya Leela ki 19th adhyay mein Krishnadas Kaviraj Goswami bade sundar dhang se इस विषय के ऊपर व्याख्या करते हैं तो अब तक हम ये चर्चा कर चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षाओं में सबसे प्राथमिक ज्ञान से आरंभ किया और रूप गोस्वामी को यह बतलाया कि यहाँ इस ब्रह्मांड के भीतर और हर एक ब्रह्मांड के भीतर अनगिनत जीव हैं जो कि 84 लाख योनियों में स्थित होकर तरह तरह के कार्य में रत हैं एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर को दूसरे शरीर में वो प्रवेश करते हैं और ऐसे जन्म मृत्यु के चक्र में अटक के पड़े हैं ये जीव ये प्राणी सब जगह हैं सर्वगत सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। एक जीव का माप बहुत छोटा है और ऐसे घूमते घूमते इन 84 लाख योनियों में से कोई एक भाग्यवान जीव होता है कोटि कोटि जीवों में से, जिसे ये भक्ति लता बीज प्राप्त होती है। जो कृष्ण भक्त होता है वो बहुत दुर्लभ होता है। कल वो श्रृंखला हमने देखी एक के बाद एक, जैसे विश्लेषण करते हैं महाप्रभु कि सारे प्राणियों में से अलग अलग विभाजन हैं, इनमें से दुर्लभ ये हैं, इनमें से दुर्लभ ये हैं। आपको याद है ना वो चार्ट, फिर से दिखाएंगे सबको। और सबसे दुर्लभ कृष्ण भक्त, स्थावर और जंगम, फिर जंगम में स्थलचर, जलचर, खेचर, फिर स्थलचर में मनुष्य, मनुष्य में अनार्य और आर्य, आर्यों में से धर्माचारी, धर्माचारी में से कनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठों में से कोटि कोटि कर्मनिष्ठों में से एक विरला ज्ञानी मिलता है, कोटि ज्ञानियों में से एक मुक्त व्यक्ति मिलता है, और कोटि कोटि मुक्त लोगों में से विरला ही कोई एक कृष्ण भक्त प्राप्त होता है। तो इतने सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के पश्चात किसी एक भाग्यवान जीव को ये भक्ति लता का बीज प्राप्त हो जाता है। तो अब विषय ये चल रहा है भक्ति लता। तो भक्ति लता के चर्चा में पहला विषय कौन सा है कि भक्ति लता का बीज कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है। कौन सा श्लोक है वो? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे महाप्रभु ने दिया कि ये भक्ति लता का बीज कैसे प्राप्त होता है। गुरु और कृष्ण के प्रसाद से, उनकी कृपा से प्राप्त होता है। जब एक बार बीज प्राप्त हो जाता है तो उस बीज का आरोपण और उस बीज की सिंचाई करनी पड़ती है। तो वो कैसे होता है, बीज का आरोपण कैसे होता है, कहाँ पे करना पड़ता है? हृदय में करना पड़ता है। और बीज में बोने के बाद, बीज को हृदय में बोने के बाद क्या करना पड़ता है, सिंचाई कैसे करना पड़ता है? श्रवण कीर्तन से। तो यहाँ तक हम कल पहुँचे थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं कि ये जो भक्ति लता का बीज है ये अन्य बीजों से भिन्न है। कर्म बीज, योग बीज, ज्ञान बीज, हर एक कार्य के लिए एक बीज चाहिए। तो अगर कोई योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी कोई बीज चाहिए। लेकिन ये जो भिन्न भिन्न तरह के बीज हैं ये भक्ति लता बीज से अलग है। भक्ति लता बीज निराला है, वो केवल शुद्ध भक्तों के संग में ही प्राप्त होता है। शुद्ध भक्तों के संग में दूसरा कोई बीज प्राप्त नहीं होता, और अभक्तों के संग में भक्ति का बीज कभी प्राप्त नहीं हो सकता। केवल कृष्ण भक्त ही चाहिए। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें परंपरा में आने वाले वैष्णवों से ये भक्ति लता बीज प्राप्त करनी चाहिए। साथ साथ में एक बार हमने ऐसे प्रामाणिक गुरु और परंपरा से, वैष्णवों से ये भक्ति लता बीज प्राप्त की, उनके उपदेश, उनके आदेश प्राप्त किए, उनका पालन करना चाहिए। और ऐसे पालन करने से ही श्रवण कीर्तन के लिए हम पात्र बन जाते हैं। श्रवण कीर्तन करना कोई साधारण बात नहीं है। कोई अगर सोचे अरे इसमें क्या है, हम प्रवचन में गए, बैठे, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, सब ठीक ठाक है, नहीं। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए भी कोई योग्यता चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर श्रवण कीर्तन करे। हाँ, दरवाजे खुले होते हैं मंदिर के, कोई भी व्यक्ति आके बैठ सकता है। तरह तरह के लोग जगह जगह में कृष्ण कथा करते हैं, तथा कथित कृष्ण कथा, सो कॉल्ड कृष्ण कथा। कोई रामायण की कथा करता है, कोई भागवत कथा करता है, कोई गीता ज्ञान यज्ञ कर रहा है, और लाखों लाखों की संख्या में लोग आकर इन कथाओं में भाग लेते हैं। तो क्या उन सबको भक्ति लता बीज प्राप्त होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रवक्ता कौन है उसके ऊपर है, उसकी भावना क्या है उसके ऊपर निर्भर है। तो जब ये सारे लोग वहां पर जाते हैं और केवल थोड़ा बहुत सुनकर आते हैं, तो क्या उनको पूरा श्रवण कीर्तन का लाभ मिलेगा? अगर वो एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, प्रामाणिक वैष्णवों के संग में रहकर उन वैष्णवों के आदेश का पालन कर रहे हों, उनका आदेश उन्होंने हृदय से ग्रहण किया हो, तब वो श्रवण कीर्तन के लिए पात्र हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रवण कीर्तन के लिए आ नहीं सकते, लेकिन आकर भी नहीं आने के बराबर हो जाता है। श्रवण कीर्तन का जो सच्चा फल है वो उनको प्राप्त नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको हम दोहराएंगे। जब तक हम हमारे नियमों को, हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने दिए हुए नियमों को, विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे, आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी हमें उस श्रवण कीर्तन का फल नहीं मिलेगा। प्रभुपाद जी स्पष्ट यहां बहुत तीव्रता से बता रहे हैं। वो कह प्रभुपाद कहते हैं कि जिसने एक प्रामाणिक गुरु या वैष्णव से श्रवण नहीं किया हो और जो विधि विधानों का पालन नहीं कर रहा है, वो कीर्तन के लिए योग्य नहीं है और नहीं वो प्रचार के लिए योग्य है। तो इसका मतलब है कि सिंचाई करना, भक्तिलता बीज का सिंचन करना श्रवण कीर्तन से, लेकिन श्रवण कीर्तन के लिए भी योग्य होना चाहिए। कैसे? आदेश का पालन करने से। अगर कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं, मुझे कुछ वैष्णव से, वैष्णवों से लेना देना नहीं है, मैं किसी के आदेश का पालन नहीं करूंगा, मुझे किसी का उपदेश नहीं चाहिए, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, मैं अपनी किताबें पढ़ूंगा, अपना जप करूंगा, तो ऐसा व्यक्ति श्रवण कीर्तन का फल नहीं प्राप्त कर पाएगा। जब तक वैष्णव नम्र नहीं होता, अपने आप को अन्य वैष्णवों के हवाले नहीं कर देता, अन्य वरिष्ठ जो परंपरा में आने वाले वैष्णवों के शरण में नहीं जाता, आज्ञाकारी नहीं होता, तब तक उसको श्रवण कीर्तन का फल नहीं मिलेगा। तो आगे एक बार हमने ये सुन लिया कि सेचन कैसे करना है इस बीज का। तो अब आगे सुनते हैं कि एक बार सिंचाई चालू होते होते फिर इस पौधे की वृद्धि कैसे होगी, ये कैसे बढ़ता है। ये भक्तिलता, भक्तिलता का बीज था, श्रवण कीर्तन के जल से इसकी सिंचाई कर दी, अब ये बीज पौधे के रूप में प्रकट हो गया, हृदय के बाहर निकल गया। अब कैसे बढ़ता है ये बीज लता, ये बढ़ती कैसे है, इसकी वृद्धि कैसे होती है? तो महाप्रभु बताते हैं उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। उपजिया, ऐसे उसको उगा उगा के बाड़े, फिर ये लता बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद बढ़ के कहां जाता है? ऊपर ऊपर ऊपर। हम यहां वृंदावन में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हों पृथ्वी लोक के ऊपर, ये भक्ति लता हमारे हृदय में, भक्ति लता बीज है, तो यहां से उगकर बड़े होकर होकर भक्ति लता बीज चढ़ते जा रही है ऊपर ऊपर ऊपर, 14 भुवन पार होकर ऊपर जा रही है भक्ति लता। ब्रह्मांड भेदी जाए, ब्रह्मांड का आकार क्या है कोई बता सकते हैं? ब्रह्म अंडा, अंडे का आकार कैसे होता है? वैसे है, बिल्कुल गोल नहीं है। अंडा बिल्कुल गोल होता है? गेंद की तरह होता है अंडा? नहीं, थोड़ा अंडे के समान अंडे का आकार है इस ब्रह्मांड का, इसी नाम है ब्रह्म अंड, ब्रह्मांड। तो ये ब्रह्मांड के भीतर खाली जगह है और उस खाली जगह में आधा जगह भरा हुआ है किस चीज से? पानी से। कौन सा पानी है ये? कारण सागर? नहीं, कारण सागर तो ब्रह्मांडों के परे है, गर्भ सागर, गर्भ उदक शाही विष्णु, भगवान श्री विष्णु गर्भ उदक शाही विष्णु के शरीर से दिव्य पसीना जो है उससे ये आधा ब्रह्मांड अंदर का भरा हुआ है, उसमें गर्भ उदक शाही विष्णु विश्राम करते हैं और फिर उनके नाभि से कमल आता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं और इस कमल के डंडे में 14 भुवन रहते हैं, स्थित हैं। तो इस खाली जगह के ऊपर आवरण है ब्रह्मांड का, ऐसे 10 आवरण हैं, 7 आवरण हैं। ये 7 आवरण अलग अलग तत्वों के बने हुए हैं, जैसे पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, अलग 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 अलग। और हर एक आवरण जो है वो पहले आवरण से 10 गुना ज्यादा है चौड़ाई में। तो देखिए इस एक ब्रह्मांड का आवरण कितना मोटा है, तो आवरण इतना मोटा और ब्रह्मांड के अंदर इतना ही जगह, बहुत कम। तो ये जो भक्ति लता है, ये जगह अंदर जो खाली जगह है उसमें से बढ़ते 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 इन 7 आवरणों का भेद करके कई लोग अब बीमार हैं, मिट्टी का नहीं, अभी मौसम ही ऐसा है, मौसम ऐसा है सभी को। तो इस सारे 7 आवरणों को भेद करके, जो कि कोई साधारण जीव भेद करके नहीं जा सकता, तो इस आवरण को भेद कर लेती है, ब्रह्मांड भेद ही जाए। और ब्रह्मांड भेद करके ब्रह्मांड के बाहर क्या है, कारण सागर है। इस कारण सागर को क्या कहते हैं, दूसरा नाम, एक नदी का नाम दिया हुआ है, विरजा, विरजा नदी। वैसे नदी नहीं है, समुद्र के बराबर है, विशाल है ये। ये विरजा नदी, ये तटस्थ स्थान है। किन दो जगह के बीच में तटस्थ स्थान है, कोई बताएंगे? भौतिक सृष्टि और आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में ये तटस्थ स्थान है। और इस विरजा नदी में या इस कारण सागर में कौन विश्राम करते हैं, शयन करते हैं? महाविष्णु भगवान। और महाविष्णु के शरीर से फिर सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। तो फिर ये विरजा नदी में आते हैं। विरजा, विरजा का अर्थ क्या है, कोई बता सकते हैं? वि रज, विगत रज, विगत मतलब बिना, और रज मतलब रजोगुण। तो जो जो जगह भौतिक गुणों से मुक्त है, विगत रज, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से भी मुक्त है, उसको विरजा कहते हैं। तो ये विरजा नदी है। फिर विरजा नदी से पार होकर फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है ये भक्ति लता। तो ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मांड का ब्रह्मलोक नहीं है, यहाँ पे 14 भुवन जो है ना, हमारा लोक क्या है, कौन सा है? भूलोक। 14 भुवनों के नाम किसको मालूम है, क्रम से बताइए, हमारा लोक कौन सा है? भूलोक। अच्छा, ऊपर के लोग बताइए सब, भुवर, स्वर्ग, जन, तप, मह, सत्य लोक। बहुत अच्छा, ये 7 लोक ऊपर के हो गए। नीचे भूलोक के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। तो ये 14 भुवन हो गए। सबसे ऊंचा लोक कौन सा है? सत्यलोक, जहां पर ब्रह्म निवास, ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो सत्यलोक, ये इसमें भी एक लोक है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं। लेकिन यहां जो ब्रह्मलोक का वर्णन है वो ये ब्रह्मलोक नहीं है, ये ब्रह्मलोक मतलब निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं यहां पर चैतन्य महाप्रभु। ये ब्रह्मा जी का निवास स्थान इस ब्रह्मांड के भीतर है, सही है ना? लेकिन इस ब्रह्मांड के भीतर, ब्रह्मांड के आवरण को पार करके, विरजा नदी को पार करके जो ब्रह्मलोक है वो है ब्रह्म तेज, निराकार ब्रह्म। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई व्यक्ति कोई रॉकेट में बैठा है, यहाँ पृथ्वी से निकलता है, उड़ता है, बादलों को पार करके फिर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, जहां सूरज की किरणें सब जगह हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड को का भेद के आवरण का भेद करके पर व्योम में प्रवेश कर लेता है। पर व्योम मतलब आध्यात्मिक जगत, ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक या ये सब जो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज है, यह है निराकार ब्रह्म। तो भगवान के धाम को परव्योम कहते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं विरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्योम पाए। तो ये भक्ति लता यहां भगवान के धाम में परव्योम में पहुंच जाती है। और उसके बाद क्या होता है, अब इस श्लोक में महाप्रभु वर्णन करते हैं कि भक्ति लता का विकास की वृद्धि कैसे होती है। अब ये चर्चा करेंगे कि इसकी गति क्या है, गंतव्य स्थान क्या है। तब जाए तदुपरी गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तबे जाए, उसके बाद वो जाती है कहां पे, तद उपरी, उसके भी ऊपर, परव्योम के भी ऊपर, वैकुंठ लोकों के ऊपर, गोलोक वृंदावन। परव्योम भगवान का धाम है। भगवान के धाम में क्या क्या है कोई बता सकते हैं, कितने लोक हैं, कौन से तरह के लोक हैं, क्या है भगवान के धाम में, ये परव्योम में क्या है, इस भौतिक सृष्टि के परे है क्या आध्यात्मिक जगत, तो आध्यात्मिक जगत है क्या, क्या है वैकुंठ? बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, कितने हैं, असंख्य वैकुंठ लोक, और वो तैर रहे हैं कौन से प्रकाश में, ब्रह्म ज्योति में, जो कि ब्रह्मलोक जिसको यहां कहा गया है इस श्लोक में, इसके पहले वाले श्लोक। जिस तरह से इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर सारे जो लोक हैं वो सूरज के किरणों में तैर रहे हैं, है ना, सही, ठीक उसी प्रकार से भगवान के धाम में वैकुंठ जगत में ये सारे वैकुंठ लोक इस ब्रह्म तेज के किरणों में तैर रहे हैं प्राय। तो ऐसे कितने सारे वैकुंठ लोक हैं, असंख्य। और ये वैकुंठ नाम क्या है, वैकुंठ विगत कुंठ, कुंठ मतलब चिंता, मतलब कष्ट तनाव। तो वैकुंठ जगत वो है जहां पे कोई तनाव नहीं, कोई कष्ट नहीं। तो वैकुंठ जगत में असंख्य वैकुंठ लोक हैं, और इन वैकुंठ लोकों में से सबसे प्रमुख लोक, सबसे ऊपर में कौन सा लोक है, गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में और अन्य वैकुंठ लोकों में अंतर क्या है, बिल्कुल, गोलोक वृंदावन में ही श्री कृष्ण स्वयं अपने आदि रूप में, द्विभुज रूप में, बांसुरी बजाते हुए, गायों को चराते हुए, गोपियों के साथ रासलीला करते हुए वो निवास करते हैं। अन्य जितने भी लोक हैं भगवान के धाम में जिनको वैकुंठ लोक कहते हैं, वो ऐश्वर्य के लोक हैं जहां पर भगवान अपने नारायण स्वरूप में निवास करते हैं, चतुर्भुज रूप में। तो अनंत कोटि वैकुंठ लोकों के ऊपर ये भक्ति लता जो है चढ़ते 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 बढ़ते ऊपर 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 जाते गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। गोलोक वृंदावन पहुंच के क्या होता है, कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। आरोहण मतलब चढ़ते, कहां पर, उस कल्प वृक्ष को जिसका नाम है कृष्ण चरण। गोलोक वृंदावन में कौन निवास करते हैं, श्री कृष्ण। गोलोक निवसति अखिलात्म भूतो, कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, वो उनका धाम है, वो उनका मूल निवास स्थान है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण सब जगह निवास करते हैं, हर एक कण में श्री कृष्ण, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं गोलोक वृंदावन में निवास करता हूं, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो, कि वो गोलोक में निवास करते हैं। साथ साथ जगह जगह शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि श्री कृष्ण सब जगह है। ये कैसे संभव है कि भगवान वहां पर भी है यहां भी है, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, वो सारे ब्रह्मांड में है, गोलोक वृंदावन में है, हर एक अणु के भीतर भी भगवान कृष्ण है। तो श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में स्थित है, अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, श्रीमती राधा रानी अन्य गोप गोपियों के साथ में है और उनके चरण कमलों में ये भक्ति लता जाके आश्रित हो जाता है, आश्रय। और अंतिम जो गंतव्य स्थान है इस भक्ति लता का वो वहां पर है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेना। तो देखिए भक्ति करते करते व्यक्ति तो यहां इस भौतिक जगत में है, कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहां बैठा है, भजन कर रहा है। लेकिन भजन करते करते क्या हो रहा है, श्रवण कीर्तन करते करते उससे हृदय से ये भक्ति लता बीज बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते बढ़ते ब्रह्मांड को भेद करके पर व्योम में पहुंचकर वैकुंठ लोकों को पार करके गोलोक वृंदावन में पहुंचकर वहां पर श्री कृष्ण के चरण कमल में आश्रय ले ले। तो ये है भक्ति लता का विकास, अब गंतव्य स्थान पूरी तरह से प्राप्त हो गया है। तो गोलोक वृंदावन में यहाँ एक माधुरी भाव है, एक बहुत मीठा भाव है जो कि अन्य वैकुंठ लोकों में नहीं प्राप्त होता, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु आगे चल के भी चर्चा करने वाले हैं। तो गोलोक वृंदावन में सब कुछ आनंद चिन्मय रस है, आनंद चिन्मय क्योंकि सब कुछ चिन्मय है वहां पर और आनंद का स्वरूप चित शक्ति का स्वरूप है। यहां भौतिक जगत में सब कुछ जड़ है, अचेतन है, लेकिन भगवान के धाम में सब कुछ चिन्मय है और आनंद का स्वरूप है हर एक कण। और भगवान जब अपने आप को विस्तार करते हैं उनके अनेक पार्षद इत्यादि के रूप में तो ये सारे भी आनंद चिन्मय रस से युक्त हैं। तो भगवान ऐसे अपने पार्षदों के साथ भक्तों के साथ में लीला करते हैं, वह आनंद का प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, ये चल रहा है गोलोक वृंदावन में। कई बार लोग ऐसे पूछते हैं, आप कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना और भगवान के धाम में लौट के जाना, लेकिन वहां जाकर हम करेंगे क्या? ये भी एक सवाल है ना कि करना क्या है, वहां उब जाएंगे हम? वहां तो कोई टीवी नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है, लेकिन टीवी सिनेमा से बहुत अधिक अच्छे मनोरंजन और अच्छे आनंद के चीजें वहां पर हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इतने सुंदर हैं, इतने रमणीय हैं, मनोहर हैं कि व्यक्ति बस उसमें पूरी तरह से बह जाता है, जीव को और कोई विचार नहीं है वहां पर, आनंद ही आनंद। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, हर पद में गोलोक वृंदावन में आनंद बढ़ते रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता एव निज रूप कला भी। निज रूप मतलब श्रीमती राधारा। तो ये है गोलोक वृंदावन और ऐसे गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण में ये भक्ति लता जाके आराम करती है। फिर आगे क्या होता है, कृष्ण के चरण में भक्ति लता आके पहुंच गई, अब क्या होगा आगे? याद रखिए कि भक्ति लता बीज वहां है और भक्त कहाँ है? यहाँ है, भक्त पृथ्वी पर है और भक्ति लता वहां पर पहुंच गई। तहां विस्तारित होना फले प्रेम फल, यहां माली से चिनित्य श्रवणादि जल। तहां वहां पे विस्तारित कि विस्तार होकर, होना फले प्रेम फल, अब ये जो भक्ति लता है इसको फल हो जाता है, फल प्राप्त होता है। और ये फल क्या है, कौन सा फल है? प्रेम फल, कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है। जब ये भक्ति लता बढ़ के कृष्ण के चरण में पहुंच जाती है तो अब ये फल आ जाता है, कृष्ण प्रेम का फल, जो कि भक्त यहां पृथ्वी लोक में रह के चखता है। अब हम ये सोचेंगे वो फल वहां है और हम यहाँ हैं तो ये फल चखेंगे कैसे हम? लेकिन यही तो अचिंत्य दिव्य चीज है। और यहाँ पे भक्त क्या करता है, यहाँ माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल, फिर जो माली होता है, जो भक्त होता है, इसका आनंद लेता है, श्रवण कीर्तन करते रहता है। अब देखिए ये जो भक्ति लता है ये आधार किसका लेता है, जब कोई साधारण लता है तो लता कहाँ पे देखते हैं आप, वैसे कहाँ दिखाई पड़ती है लता? पेड़ के ऊपर। तो लता जो पेड़ में अपने आप को लपेट कर पेड़ का आश्रय लेकर वो ऊपर 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 चढ़ता है ना। तो ये भक्ति लता किसका आश्रय लेता है चढ़ते समय? गुरु कृष्ण प्रसाद है पाए भक्ति लता भी, जो ऐसे गुरु कृष्ण प्रसाद से ही ये भक्ति, ये जो लता है किसी भौतिक चीज का आश्रय नहीं लेता है, क्योंकि यह है आध्यात्मिक चीज। तो भौतिक चीज का आश्रय कैसे ले सकता है? यहाँ ऐसा कौन सा लोक है इस भौतिक जगत में, कौन सा वृक्ष है जो कि भक्ति लता को आश्रय दे सकता है? भक्ति लता के लिए कोई भौतिक आश्रय नहीं है, सीधे जाके गोलोक वृंदावन ही उसके लिए आश्रय है। इसका मतलब है कि भक्ति कोई भौतिक चीज के लिए नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी समझाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम देवताओं की भक्ति कर सकते हैं या किसी अन्य व्यक्ति की भक्ति कर सकते हैं, देशभक्ति कर सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं ये भक्ति शब्द केवल कृष्ण के लिए हो सकता है, किसी भौतिक चीज के लिए नहीं, क्योंकि भक्ति लता बीज आध्यात्मिक है, भौतिक चीज का आश्रय नहीं ले सकता। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यह कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त हो जाता है तो बड़े भाव विभोर होकर प्रेमावेश में आकर भक्त जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा जारी रखता है। और किस तरह से प्रेमोन्माद अवस्था में भक्त कृष्ण की सेवा करता है इस स्तर पर, इसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया स्वयं भगवान ने, जबकि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जब महाप्रभु यहां पर आए तो उन्होंने ऐसे भक्ति का प्रदर्शन किया और इस भक्ति का स्वाद लिया, उसी कृष्ण फल, कृष्ण प्रेम के फल को उन्होंने चख लिया, और ये बहुत मीठा है। और ऐसे अवस्था में जो भक्त होता है केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, उसके मन में और कोई उद्देश्य नहीं होता, बस कृष्ण को प्रसन्न करें और कुछ नहीं। आप वो कहानी जानते हैं ना कि जब श्री कृष्ण को सरदर्द हुआ था तो श्री कृष्ण ने, सब भक्त चिंतित हो गए, नारद मुनि चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई वैद्य की दवाई चलेगी नहीं, तो एक ही दवाई चल सकती है, वो क्या है? मेरे भक्तों के चरणों की धूलि। तो नारद मुनि आपके चरण की धूलि दीजिए। अरे अरे, ये कैसे कर सकता हूँ मैं, तो नरक चले जाऊंगा, संभव नहीं है। अरे भगवान की चरण धूलि हमारे सर पे होनी चाहिए, तो हमारे चरण धूलि भगवान के सर पे कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाके वृंदावन के गोपियों से पूछो, मेरी दशा का वर्णन करो। तो नारद मुनि गए गोपियों के सामने, कहने लगे कि श्री कृष्ण को बहुत सरदर्द हो रहा है और उसके लिए दवाई चाहिए। क्या है दवाई? दवाई है आपके चरणों की धूलि। अच्छा, तो ये लो भर भर के सबने दिया, जितना चाहिए उतने चरण धूलि ले जाओ। तो नारद मुनि हताश होकर, अरे आप जानते नहीं, आपके चरण धूलि कृष्ण के सर के ऊपर डालना है, आप नरक में जाएंगे। कोई बात नहीं, आप नरक में जाएंगे तो हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को सरदर्द से मुक्ति मिल जाएगी, राहत मिल जाएगी। तो अगर हम श्री कृष्ण के लिए इतना भी कुछ कर सकें, कृष्ण को प्रसन्न कर सकें, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। तो ये वृंदावन के निवासियों का भाव है, उनका एकमात्र उद्देश्य है मन में कि कैसे श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, कैसे श्री कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट किया जाए। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धौर्य प्रेम नाम, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करना ये सच्चा प्रेम है। और ये ऐसा एक अलौकिक चीज है, ऐसी अलौकिक चीज है ये, कि दुनिया के लोग ऐसे प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। और फिर आखिर जब यहां महाप्रभु कहते हैं यहां माली सेचे नित्य श्रवण आदि जल, मतलब कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी जो भक्त होता है अपनी साधना को छोड़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्त सोचे कि चलो मैंने बहुत भक्ति कर ली, अब मुझे कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त हो गया, अब क्यों ये सुबह सुबह उठ के मंगल आरती करना, ये सब तकलीफ क्यों लेना है, क्यों इतना सब गड़बड़ करना है,
कोई ये सेवा करो, जप करो, ये करो, कष्ट ले लो, तप, कोई जरूरत नहीं, अभी कृष्ण फल मिल गया, हम इसको खाते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, महाप्रभु कहते हैं कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त करने के बाद भी हमारी भक्ति लता बीज जब गोलोक वृंदावन में पहुंच जाती है उसके बाद भी भक्त अपनी साधना को, अपने श्रवण कीर्तन को छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता बताइए? इस दुनिया में देखिए, जब व्यक्ति बहुत पैसे कमा लेता है ना, तो कभी कभी सोचता है चलो अब मैं थक गया, मेरी उम्र 55-60 साल की हो गई, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अब मैं मेरा व्यवसाय नहीं करूँगा, मेरी नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं जो कमाए हुआ है जीवन भर उसका मैं भोग करूँगा, आराम से रहूँगा, कोई चिंता नहीं चाहिए मुझे, है ना। तो एक समय आता है जब हर एक व्यक्ति अपने कार्य को त्यागना चाहता है ताकि वो आराम से बैठे, कुछ दूसरा कार्य करे। मतलब वो जो वास्तव में चीज़ करना चाहता है वो एक है, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो कार्य वो कर रहा है, जो साधन है, वो अलग है। इसलिए जब उसको पैसे की प्राप्ति हो जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, वो कहता है ठीक है बहुत हो गया, अब हम नहीं करेंगे। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण प्रेम का फल प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति श्रवण कीर्तन या अपनी साधना को छोड़ता नहीं। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि ये श्रवण कीर्तन का स्वाद जो है इतना मीठा है कि कृष्ण प्रेम का फल मिलने के बाद भी वो छोड़ नहीं सकते, और भी ज्यादा मीठा हो जाता है, और इस रस का पान करना चाहते हैं। मानिए कि उस भक्त को अभी नशा हो गया है ना। जब आदमी को नशा हो जाता है तो कि उस चीज को छोड़ नहीं सकता। कई लोग हैं इस जगत में जो सिगरेट पीते हैं, या जो शराब पीते हैं, या जिनको बुरी आदतें हैं, एक बार उनको आदत लग जाती है, वो नशा लग जाता है, वो छोड़ नहीं सकते उस कार्य को। उसी प्रकार से जब कृष्ण भक्त परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है, कृष्ण प्रेम का फल उसको प्राप्त हो जाता है, तब वो श्रवण कीर्तन को छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि श्रवण कीर्तन इतना रसमय है, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण उपदेश इतना मीठा है, इतना अमृत है इसमें, कि उसको छोड़ ही नहीं सकता, अगर चाहे भी नहीं छोड़ सकता। जैसे वृंदावन के गोपियां जो हैं, जब कृष्ण चले गए और लौट के आए नहीं, तो उनको गुस्सा आया कि अरे क्यों हम बार बार कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, दिन भर रात भर हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं आपस में आके बहुत हो गया, अब ये कृष्ण देखो बिल्कुल आभार, बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है इसमें, हम इतना कुछ कर रहे हैं इसके लिए, आ ही नहीं रहे यहाँ पर, तो हम क्यों सोचे उसके बारे में, हम नहीं सोचना है, आज से हम कृष्ण के बारे में बोलेंगे नहीं, हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे नहीं, हम व्रत लेंगे कि आज से हमको कृष्ण को भूल जाना है। हम लोग कौन से व्रत लेते हैं कि आज से हमको कृष्ण को याद करना है। अब कार्तिक में कितने भक्तों ने व्रत लिए हैं कि हम ज्यादा माला करेंगे, हम ज्यादा सेवा करेंगे, हम दीप अर्पण करेंगे। हम ये सब व्रत क्यों करते हैं? ताकि हमारे कृष्ण का स्मरण बढ़ जाए, है ना। कोई कृष्ण का स्मरण कम करने के लिए व्रत करते हैं? लेकिन हमारे लिए अनुसरणीय कौन है, उदाहरण कौन है? वृंदावन की गोपियां। और गोपियां क्या व्रत ले रही हैं? स्मरण कम करना, हमको नहीं करना है। और फिर वो जाके ध्यान में बैठते हैं किसी पेड़ के नीचे कि कृष्ण निकल जाओ, निकल जाओ, हमारे मन से निकल जाओ, ध्यान नहीं करेंगे हम। लेकिन क्या वो सफल होती हैं? गोपियां सफल होती हैं अपने प्रयास में? नहीं, क्योंकि कृष्ण, श्री कृष्ण छा गए हैं उनके चित्त में, समा गए हैं। इसलिए अगर वो चाहें भी तो भी श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण के स्मरण को छोड़ नहीं सकते। इसलिए दिन भर रात भर श्रवण कीर्तन कृष्ण के बारे में चलते रहता है वृंदावन में, क्योंकि इतना मीठा है, व्यक्ति इतना आदि हो जाता है इसका कि छोड़ नहीं सकता। और कारण बताइए कि क्यों ये श्रवण आदि जो पद्धति है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति छोड़ता नहीं है?
अभ्यास बना दिया है, उसके वो अभ्यास को छूट नहीं है।
वो अभ्यास हो जाता, अभ्यास चलते चलते वो हो जाता, उसको छोड़ नहीं सकता। नए साधुओं के लिए शिक्षा देने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये भी, नए भक्तों के लिए। षड गोस्वामी भी ऐसे ही करते थे ना, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल अवसानी कतो। ये वो अपने संख्या पूर्वक जो है दंडवत करना, माला जप करना सब करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की संख्या की साधना ऐसी थी, पाषाण रेखा, जैसे पत्थर की लकीर, पत्थर के ऊपर आप कोई लकीर करें, लकीर समझे ना, लाइन, पत्थर के ऊपर लकीर कैसे की जाती है, ठोकर मार मार कर की जाती है ना। एक बार लकीर आपने की पत्थर के ऊपर, फिर वो मिट नहीं सकती। पानी के ऊपर लकीर कैसे होता है, आज गया एक सेकंड बाद मिट जाता है। पानी के ऊपर आपने लाइन किया है, आप पानी के ऊपर लिखिए, कितनी देर तक वो रहेगा, एक क्षण के लिए भी नहीं रहेगा। लेकिन पत्थर में ठोकर मार के अ लिखिए, वो तो काफी लंबे समय तक रहेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की साधना ऐसी थी जैसे कि पत्थर के ऊपर लकीर, कभी कोई मिटा नहीं सकता था उस साधना को। रोज हजार भक्तों को दंडवत करते थे। सनातन गोस्वामी भी बार बार गोवर्धन की परिक्रमा रोज किया करते थे, कभी छोड़ा नहीं उन्होंने। रोज नियमित रूप से माला का जाप करते थे। तो शेख गोस्वामी तो नित्य पार्षद हैं, नित्य सिद्ध हैं भगवान कृष्ण के, और यहाँ भी रहकर कृष्ण प्रेम को के अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, फिर भी उन्होंने अपनी साधना छोड़ी नहीं, क्योंकि इसमें उनको रस आ रहा था और अन्य वैष्णवों के लिए वो उदाहरण भी प्रस्तुत पेश कर रहे थे। तो अगर ऐसा नहीं करते तो जो नए नौसुखिया वैष्णव हैं वो भी उनका अनुकरण करने का प्रयास करेंगे कि चलो हम भी उस स्तर पे पहुंच गए हैं, हम भी अब माला छोड़ देंगे, हम भी ये करेंगे, आराम से रहेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु एक बार हरिदास ठाकुर के पास आए थे, जबकि हरिदास ठाकुर बहुत बूढ़े हो गए थे, और उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर बहुत बीमार हैं, लेटे पड़े हैं अपने शैया के ऊपर, उन्होंने कहा कि हरिदास क्या बात है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? कहा शरीर तो ठीक है लेकिन मन बीमार है, मेरी माला नहीं हो पा रही है। मैंने जो हरिदास ठाकुर कितने माला किया करते थे रोज, 192 माला, 3,00,000 नाम रोज, जो इसको 20-21 घंटे लगते थे, फिर बचे हुए समय में आहार निद्रा सब करते थे। हमारी बात उल्टी है ना, 2-3 घंटे में जाप कीर्तन सब कुछ हो जाता है, बाकी समय में सब कुछ खाना पीना सोना चलता है। तो हरिदास ठाकुर 21 घंटे जप कर रहे थे लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि शरीर ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है, मेरा जप ठीक से नहीं हो रहा है। हालांकि हो रहा है, नामाचार्य है वो, कैसे नहीं होगा ठीक से। तो महाप्रभु ने कहा देखो हरिदास, अब तुम बहुत बूढ़े हो गए हो और तुमने कृष्ण प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ये साधन भजन का फल प्राप्त हो चुका है तुमको, अब तुम छोड़ दो, माला कम करो, व्रत को इतना कड़क मत करो, अभी 21 घंटे करना, अभी थोड़ा आराम करो। लेकिन हरिदास ठाकुर ने माना नहीं कि मैं इतना नीच हूँ, इतना पतित व्यक्ति हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो हमें जानना चाहिए कि हम कितने ही भले वरिष्ठ हो जाएं, तथा कथित वरिष्ठ हो जाएं इस कौन में, हम सोचे कि ठीक है हम 10 साल से भक्त हैं, 20 साल से हैं, 50 साल से भक्त हैं, कितने भी सालों से भक्त क्यों ना हो, लेकिन हमारी साधना हमको कम नहीं करना है। हम ये नहीं सोचना है कि इतने साल हो गए जप करते करते, अब हम थोड़ा कम कर सकते हैं। अभी कोई भक्त हमको एक दिन कई एक दो साल पहले मिले थे, उनको बोल रहे थे अभी हमने 15 साल मंगल आरती अटेंड किया, अब बहुत हो गया, अब इतने साल किया अब क्या करना है, ऐसा नहीं होना है, ये सही भावना नहीं है। 15 साल मंगल आरती किया तो कितना सौभाग्य हमारे कि हम कर सके, तो और आतुरता से हमें मंगल आरती की राह देखनी चाहिए। अरे कल कब आएगा जबकि हम मंगल आरती आ सके, हम मंगल आरती कर सके। ये आतुरता जब तक नहीं आएगी तब तक हम समझ सकते हैं कि हम नौसुखिया स्तर में ही हैं। जैसे हर एक व्यक्ति आतुरता से राह देखता है उस चीज के लिए जो कि उसके लिए बहुत प्रिय है, तो कल उठ के हम कीर्तन करेंगे, कल उठ के हम माला जाप करेंगे, कब वो समय आएगा? इसलिए ये साधन भजन ये कभी भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते रहें वैसे हमारे नियम का पालन और कड़क होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो फिर आगे चल के महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है, देखो अब वास्तव में सच्चे प्रयोजन की प्राप्ति हो गई, सच्चा फल सारे साधना का प्राप्त हो गया। अन्य जगह चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में सिखाते हैं कि जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए तीन कदम होते हैं, थ्री स्टेप्स। कौन से हैं ये? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध क्या है? जब आत्मा और भगवान के बीच में संबंध हम जान लेते हैं, मैं कौन हूं, भगवान कौन है और हमारा संबंध क्या है, यह है संबंध ज्ञान। और उसके बाद इस संबंध के अनुसार हमें क्या कार्य करना है, उसको कहते हैं अभिधेय। फिर हम भजन क्रिया करते हैं, माला जप करते हैं, मंगल आरती में आते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, ये सब भजन क्रिया है, इसको अभिधेय कहते हैं। और ये सब करते करते प्रयोजन क्या है, इसको क्या फल मिलने वाला है, हमारी क्या आशा है, अभिलाषा क्या है? प्रयोजन कृष्ण प्रेम। हर चीज का कोई कि हर चीज की कोई परीक्षा होती है, आप अच्छे व्यापारी हैं या नहीं इसका प्रमाण क्या है, परीक्षा क्या है, आप अच्छे व्यापारी हैं कि नहीं, पैसा कितना है, है ना, आप अच्छे राजा हैं या नहीं, कैसे पता चले, प्रजा कितनी सुखी है, राज्य कितना बड़ा है, धन आपके पास कितना है, सेना कितनी मजबूत है, एक विद्वान की परीक्षा क्या है, इसको कितना ज्ञान है। तो उसी प्रकार से हम अगर देखेंगे तो एक वैष्णव वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर कैसे चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर जिससे कि वो कहे कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया हूं। कृष्ण प्रेम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण, तो ये हमारी परीक्षा है। और भौतिक जगत से निराशक्ति, ये दो चीजें हम हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अपने आप की परीक्षा हमें करनी चाहिए, हृदय में हमें परख लेना चाहिए कि वास्तव में भक्ति में प्रगति कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कृष्ण के प्रति आकर्षण मेरे हृदय में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, दुनिया के प्रति जो संसार के भोग के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ रही है या कम हो रही है। तो हर एक भक्त को चाहिए कि वो अपने आप से ईमानदार रहे, सिंसियर रहे। हर एक व्यक्ति को अपने हृदय में अपनी ही परीक्षा करनी चाहिए कि मैं भक्त क्यों बना, किस लिए बना और कहां तक मैं अब आगे बढ़ गया हूं। तो ये प्रयोजन है, ये हमारी परीक्षा है, टेस्ट है कि क्या हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब महाप्रभु ने अच्छी तरह से ये बता दिया कि इस भक्ति लता की वृद्धि कैसे होती है, इसका फल क्या है। लेकिन कहने के लिए तो बहुत आसान, केवल श्रवण कीर्तन करो और कृष्ण प्रेम प्राप्त करो, लेकिन दुनिया में सब चीजें इतने आसान नहीं होती हैं। हम सोचते हैं देखो व्यवसाय है बहुत अच्छा है, इधर से खरीदा उधर से बेचा, करोड़ों रुपए कमा गए, एक महीने में हम करोड़पति हो जाएंगे। प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब व्यापार करने जाते हैं तो क्या होता है, अरे ये अड़चन है, अरे ये समस्या है, इसको देखना है उसको देखना है, आ जाती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमने पद्धति को जान लिया, केवल श्रवण कीर्तन करो, भक्तों का संग करो, बस सब कुछ ठीक है, कृष्ण प्रेम आ जाएगा, सही है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं साथ साथ में देखो, जब कोई माली बीज बो देता है जमीन में, सिंचन भी अच्छी तरह से करता है, लेकिन फिर भी कभी कभी जो पौधा है या जो फसल है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? हाँ, क्योंकि तरह तरह के और कष्ट कठिनाइयां आ सकती हैं जो कि उस पौधे को या उस फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो कि हमारी भक्ति लता को नष्ट कर सकती हैं और जिनसे हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में महाप्रभु अब चर्चा करने वाले हैं।
यदि वैष्णव अपराध उठे हति माता, उपाड़े व छिंडे तारा सुखी जाए पाता।
यदि वैष्णव अपराध उठे, अगर ये श्रवण कीर्तन करते करते भक्ति लता का पोषण करते करते हमारे हृदय में वैष्णव अपराध उठ जाता है मन में, ये कैसे है? हाथी माता एक पागल हाथी के बराबर है। जब एक सुंदर बगीचा होता है तो सुंदर बगीचे में आकर कोई पशु वगैरह आए तो सब कुछ खत्म कर सकते हैं ना। हम एक जगह गए थे, वहाँ पर किसान बड़े परेशान थे क्योंकि उनके सारा फसल जो है रात को ये जंगली सुअर आके तहस नहस कर देते थे, सब कुछ सत्यानाश करके छोड़ देते थे। बेचारे इतने महीनों से ये लोग परिश्रम कर रहे हैं, फसल आ गया और एक रात में सब खत्म। जब हम चित्रकूट गए थे, हमें याद है चित्रकूट में अमरूद बड़े अच्छे मिलते हैं, फल बहुत मीठे अमरूद वहाँ के प्रसिद्ध हैं। आप गए कोई चित्रकूट? वहाँ के अमरूद खाए कि नहीं? खाए ना, अमरूद बहुत अच्छे मिलते वहाँ पर। लेकिन वहाँ अमरूद वाटिका में समस्या क्या है? बंदर, एक भी फल रहता नहीं। हम तो देखते ही हैं बंदर कितने क्या क्या करते हैं, तो इसलिए उनको रात भर जगा हुआ रहना पड़ता है। रात भर ये चीखते रहते, उनको रखवाली करते हैं पेड़ों की। तो अगर हमें कुछ फसल उगाना है या कोई फूल का वृक्ष वगैरह फल फूल का वृक्ष लगाना है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा नहीं करेंगे तो तरह तरह के पशु आके पक्षी आके खा जाएंगे, सब नष्ट कर देंगे। तो उसी प्रकार से महाप्रभु कहने जा रहे हैं कि भक्ति लता का बीज आपने बो दिया, पानी भी आप डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं और ये पौधा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आपने इसकी रक्षा नहीं की तो तरह तरह के पशु आके खा जाएंगे उसको। तो सबसे भयंकर खतरनाक पशु कौन सा है जो आके किसी बगीचे को नष्ट कर सकता है? हाथी। जब हाथी किसी बगीचे में आ जाता है तो सब कुचल के खत्म कर देता है। तो इस भक्ति लता बीज को नष्ट करने के लिए सबसे खतरनाक जो चीज है, जो पशु है, वो है वैष्णव अपराध। तो अगर वैष्णव अपराध भक्त करता है तो महाप्रभु कहते हैं उपाड़े वा छिंडे तार सुखी जाए पाता। तो उस भक्ति लता को उखाड़ देता है और उखाड़ के उसको फाड़ देता है, तोड़ देता है और फिर सुखी जाए पाता। फिर इस भक्ति लता के जो पन्ने हैं पत्ते हैं वो सूख जाते हैं। फिर ऐसे सूखे हुए लता में पेड़ में भले अच्छे वृक्ष कहाँ से, अच्छे फल कहाँ से आ सकते हैं? फिर कृष्ण प्रेम संभव नहीं है। तो इसलिए वैष्णव को चाहिए कि वो वैष्णव अपराध से बच के रहे। तादर चरण से भी भक्त सनिवास जन्म जन्म होई यही अभिलाष। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कहते हैं कि वैष्णव वो होता है जो समझ लेता है अच्छी तरह से कि मेरे जीवन की अभिलाषा है कि केवल मैं भक्तों के संग में रहूं और भक्तों की सेवा करूं। अगर केवल हमने अपने जीवन का उद्देश्य इसको बनाया कि हमारे पूर्वज आचार्यों को और वैष्णवों को हम प्रसन्न करें तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं वो सीधे भगवान तक पहुंचना चाहते हैं या सीधे राधा रानी तक पहुंचना चाहते हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, हम उनकी तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें वैष्णवों का दास बनना है। जब तक हम वैष्णवों के दास बन के उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हम ये कृष्ण प्रेम का फल नहीं प्राप्त कर सकेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ सुंदर चीज बता रहे हैं तात्पर्य में कि हमें सदैव अपने आप को आचार्यों के दासों के दासों के दास समझना चाहिए और ऐसे सोचकर हमें वैष्णवों के समाज में निवास करना चाहिए। क्या कहते हैं प्रभुपाद? हमें क्या सोचना चाहिए? अपने आप को किस भावना से वैष्णवों के संग में रहना चाहिए? दास भावना नहीं, दासों के दासों के दास की भावना से। दास दासानुदास, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत भक्ति में परिपक्व हो गया हूं और मैं भक्तों के संग से अलग रह सकता हूं और इसलिए फिर मैं मुझे अभी कोई नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्योंकि ये एक वैष्णव अपराध हो जाता है, तो फिर ऐसे भक्त की जो परिस्थिति है वो बहुत खतरनाक हो जाती है, उसका पतन कभी भी हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एक चेतावनी हम सबको दे रहे हैं कि वैष्णव अपराध कहीं नहीं, कभी नहीं करना, और खास करके वृंदावन में रह के अगर हम वैष्णव अपराध करें तो ये बहुत ही हानिकारक हमारे लिए हो सकता है। इसलिए सबको चाहिए कि वैष्णवों के बीच में बड़े प्रेम से रहें, नम्रता से रहें। समस्या तब आती है जब हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम वैष्णवों के दासानुदास हैं। अगर इस भावना को हमेशा हमारे मन में बना के रखेंगे तो कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। जिस समय हमें यह लगता है कि मैं प्रभु हूं, क्योंकि लोग मुझे बुला रहे हैं प्रभु है? प्रभु जरा आइए, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रभु हैं। जगन्नाथ प्रभु यहाँ पे आइए, कृष्णदास प्रभु यहाँ पर देखो ये है, हम प्रभु हैं, हम दास हैं, दूसरे हमारे प्रभु हैं, दूसरे हमें बुला रहे हैं प्रभु कहकर, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हम प्रभु नहीं, हम दास हैं। फिर प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि हमको सारे 10 नाम अपराध से बचना है। जब तक ये नाम अपराध से हम बचेंगे नहीं, तब तक हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं करेंगे। कोटि कोटि जन्मों तक हम जब भी कर रहे हों, लेकिन जब तक नाम अपराध है तब तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, जल्दी से आप बताइए 10 नाम अपराध कौन से, एक एक करके आप बताइए। पहला नाम अपराध, उन वैष्णवों की निंदा करना जो कि भगवान नाम के प्रचार में अपना सारा जीवन अर्पित कर रहे हैं। अगर कोई वैष्णव है लेकिन सारा जीवन अर्पित नहीं किया है तो क्या उसका अपराध कर सकते हैं? हम कहने के लिए ऐसा कहते हैं, लेकिन हमें जानना चाहिए कि सारे वैष्णवों की बात हो रही है, न केवल उनकी जिनके जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है भगवान के लिए। नहीं तो क्या डेंजर है, खतरा क्या है? अरे इन्होंने अर्पण नहीं किया, फिर हम चर्चा करेंगे इन्होंने अर्पण किया नहीं किया है, ये फिर इनका अपराध, इनके प्रति कुछ बोलेंगे अपराध होगा नहीं होगा? नहीं, सब वैष्णवों के सताम निंदा, सताम निंदा मतलब जो भी वैष्णव हैं, जो भी सतमार्ग में चल रहे हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो दूसरों की निंदा कर सकते हैं जो भक्त नहीं है? नहीं करना चाहिए, बिना वजह के निंदा नहीं करना चाहिए। केवल जब कृष्ण भक्ति के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए, इसके प्रचार के लिए, या किसी भक्त को गलत चीजों से बचाए रखने के लिए, तब हम ऐसी निंदा कर सकते हैं। लेकिन ये निंदा नहीं है, केवल एक सुरक्षा के लिए एक पद्धति है। जब प्रभुपाद जी तरह मायावादी सन्यासियों की टीका करते थे, उनकी निंदा करते थे, तो किसी घृणा या द्वेष भावना से नहीं, केवल अपने शिष्यों को इस गलत दर्शन से, फिलॉसफी से, इस गलत पथ से बचाने के लिए करते थे। तो अन्यों की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये निंदा करने की जो भावना है ये कलयुग में बहुत फैली हुई है, ये कलयुग की सबसे बड़ी बीमारी है, दोष वृत्ति, दूसरों में दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, छोटी सी बात में झगड़ा करना दूसरों से, उनके दोष ढूंढ कर, कलो दोष निधे राजन, है ना? परीक्षित महाराज को भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग दोषों का सागर है। हमेशा हम दूसरों में दोष देखते हैं और तुरंत कोई समय वेस्ट नहीं करते निंदा करने में, जैसे ही दोष दिखाई पड़ता है तुरंत निंदा शुरू कर देते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के काम लेना चाहिए। भक्तों की तो निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्यों की भी नहीं। दूसरा नाम अपराध, देवी देवताओं को भगवान के समान नहीं समझना, उनके नाम को और उनको भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा, मतलब क्या, गुरु के आदेश का पालन नहीं करना। पहले भी हम सुन चुके हैं ना, प्रभुपाद कह रहे थे कि गुरु के आदेश का मतलब वैष्णवों के आदेश का पालन नहीं करेंगे तो श्रवण कीर्तन का फल नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे से श्रवण कीर्तन में भी रुचि कम होती जाएगी और एक दिन श्रवण कीर्तन को भी व्यक्ति छोड़ देगा। चौथा नाम अपराध, एक कोई बोलिए हाथ ऊपर करके, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का निंदा करना, क्योंकि वैदिक शास्त्र जो है वो भी भगवान से अभिन्न है, भगवान में और उनके शास्त्रों में कोई अंतर नहीं है, तो इनकी निंदा करने से भी हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। जब लोग कहते हैं अरे एक कृष्ण नाम लेने से व्यक्ति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अरे कैसे हो सकता है, ये तो सब काल्पनिक चीजें हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ये केवल बढ़ा चढ़ा के सब कहा गया, ये से अपराध हो जाता है। हरि नाम की शक्ति में पूर्ण विश्वास होना चाहिए और जानना चाहिए कि जो भी शास्त्र में वर्णन है हरि नाम के प्रति वो सब ठीक है, सही है। छठा नाम अपराध, पवित्र भगवान नाम है अर्थवाद का आरोप, कोई अलग ही अर्थ देना, अपने मनगढ़ंत ढंग से तोड़ मोड़ करके कुछ अलग से अर्थ लगा देना हरे कृष्ण महामंत्र को, वो भी अपराध है। आठवां, सातवां, नाम के बल पर पाप करना, ये भी एक बहुत खतरनाक अपराध है। अपराध करना, पाप करना और सोचना कि ठीक है अब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर लेंगे फिर जो पाप है उसको धुला डालेंगे, फिर कुछ पाप करना, महामंत्र जप करना, फिर से पाप करना, फिर से महामंत्र का जप करना, ये सबसे, ये भी एक बड़ा अपराध है। आठवा,
हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन वैदिक कर्मकांड में वर्णित शुभ सकाम कर्म,
कर्मनिष्ठ, कलम देख रहे थे ना, कर्मनिष्ठ और कृष्ण भक्त, कितना अंतर है कर्मनिष्ठ और कृष्ण भक्त में, देखिए कर्मनिष्ठ कहां और कृष्ण भक्त कहां। तो जो लोग सोचते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना इससे हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें बहुत धन मिलेगा इत्यादि, ये सब लोग कर्मनिष्ठ हैं, लेकिन वास्तव में ये एक नाम अपराध है, क्योंकि हरि नाम केवल किसी भोग के लिए, भौतिक चीज के लिए नहीं लेना चाहिए। कृष्ण नाम तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए लेना चाहिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। तो जो व्यक्ति कृष्ण नाम को कोई भौतिक चीज समझता है, कर्मकांड का एक मार्ग समझता है, वो भी अपराध करता है। नौवां अपराध, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम के महिमा का उपदेश करना। क्यों क्यों ये अपराध माना जाता है, क्यों, ये सत्य बोल रहे हैं ना हम, ये तो कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो अश्रद्धालु को बोलने से अपराध क्यों होता है, हम झूठ तो नहीं बोल, सच बोलने से क्या अपराध,
क्योंकि अश्रद्धालु व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, फिर वो अनजाने में अपराध करेगा तो उसके ऊपर ज्यादा है।
कैसे अपराध करेगा वो,
जिसकी श्रद्धा नहीं है अगर उसे उनको समझाएंगे, कहते ना जिस चीज का पता नहीं है अगर वो पाप करते हैं उसका इतना फल नहीं होता, तो अगर जानकर हम उस पाप को करें तो वो महापाप कहलाता है, तो इस तरह से उसके लिए महापाप हो जाए।
मूल बात यह है कि जब किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को आप कृष्ण नाम की महिमा का वर्णन करेंगे और उस वो निंदा करेगा, वो कहेगा वो आपकी भी निंदा करेगा, हरि नाम की निंदा करेगा, भगवान कृष्ण की निंदा करेगा, और फिर उसके पाप के कारण आप होंगे, क्योंकि आपने जाकर उनको एक अयोग्य व्यक्ति को ऐसे चीज के बारे में बताया जो कि वो सुनने लायक नहीं है, तो फिर क्या हमें प्रचार ही नहीं करना चाहिए, फिर लोग भक्त कैसे बनेंगे, क्या उत्तर देंगे आप, अश्रद्धालुओं को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फिर महाप्रभु कैसे,
हरि नाम करवाना चाहिए उसे, प्रसाद दिलाना चाहिए।
इसके लिए दो चीजें हैं, सबको हमें कृष्ण प्रेम के बाढ़ में बहा के ले जाना है। परंतु जिनकी श्रद्धा नहीं है तो उनको सीधे हमें ऐसे विषयों के बारे में चर्चा नहीं बताना चाहिए जिससे कि वो अपराध करें। हमें प्राथमिक ज्ञान उनको देना चाहिए, ऐसे भाषा में उनसे बात करना चाहिए जिसको कि वो समझ सकते हैं। शरीर है, आत्मा है, इसके बारे में बताएं, भगवान है कैसे समझें, जिनकी श्रद्धा नहीं है ऐसे बातचीत उनको करनी चाहिए। धीरे धीरे से उनकी श्रद्धा का विकास जैसे जैसे होते जाएगा वैसे वैसे उनके स्तर के अनुसार किस स्तर पर वो पहुंचे हैं उस स्तर पर उनको उस तरह का ज्ञान देना चाहिए। समय के पहले ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे दूसरी कक्षा में होने वाले विद्यार्थी को दसवीं कक्षा के गणित सिखा दिए तो वो कैसे कर पाएगा, वो तो समझ नहीं पाएगा। उसी प्रकार से भक्ति करते हुए हमें समझ लेना चाहिए। जो एक निपुण प्रवीण प्रचारक होता है वो श्रोताओं के स्तर को जान लेता है कि किस स्तर पर हमें बात करना चाहिए। अगर नौसुखिया भक्त है उसके उसके लिए आपने ऊंची ऊंची बातें कही तो वो कैसे समझ जाएगा, उसकी श्रद्धा तो भला कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे अश्रद्धालु लोगों को हमें ऐसा ज्ञान देना चाहिए जो कि वो समझ सके। और दूसरी बात, अगर बिल्कुल अश्रद्धालु है उतना भी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करना चाहिए, कम से कम कृष्ण प्रसाद देना चाहिए उसको। कृष्ण कीर्तन सुनने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो कृष्ण प्रसाद देके उसको संतुष्ट करना चाहिए। दसवां नाम अपराध, हरि नाम की महिमा इतना सुनने के बाद भी हरि नाम में श्रद्धा उत्पन्न न होना और इतने सारे भौतिक आसक्तियों को बनाए रखना। जब हम आध्यात्मिक उपदेश सुनते हैं तो हमारी आसक्तियों को हमें काट देना चाहिए, हरि नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। तो अगर ये सब नहीं हो रहा है तो ये भी एक अपराध होता है। और ये तो हुआ दस नाम अपराध। इन दस नाम अपराधों की जननी कौन सी अपराध कौन है? ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। हम जप करते हुए बैठे हैं लेकिन मन विश्व भ्रमण के लिए घूम रहा है, वर्ल्ड टूर में, यहां वहां, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, किसने मुझसे क्या बात की, मैं कल क्या करूंगा, आज के लिए क्या मेरा कार्यक्रम होगा, सब मन घूमते रहता है। जब ध्यान से हम जप नहीं करेंगे तो भौतिक इच्छाएं हमारे मन में बल्कि बढ़ जाएंगी, कम नहीं होंगी बढ़ जाएंगी। इसलिए नाम अपराधों से हमें बच के रहना चाहिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं, ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्तिर जाय छे नहय उद्गम। वो कहते हैं कि इस तरह से वो माली मतलब जो भक्त है, जो भक्तिलता का ख्याल रख रहा है, यत्न कोरी मतलब बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यान से, कौरे आवरण उसके आवरण कर देता है। जैसे एक माली जो है अपने बगीचे में एक ऐसे फेंस कर देता है, आवरण कर देता है ताकि कोई पशु अंदर न आए, उसी प्रकार से भक्त को चाहिए कि अपनी भक्ति लता को बचाए रखने के लिए अपने हृदय के ऊपर ऐसे एक आवरण बनाए, मतलब ये अपराध नहीं करे जिससे कि भक्ति लता जो है बच के रहे। अपराध हस्तिर जाय छे न हर उद्गम। इस प्रकार से उस भक्ति लता के अंदर जो है वो कोई अपराध न होकर वो कट न जाए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि नौसुखिया भक्तों के लिए सबसे अच्छी सुरक्षा या सबसे अच्छा आवरण क्या है, शुद्ध भक्तों का संग। हमेशा अच्छे भक्तों के संग में अगर हम रहेंगे तो फिर हमारी भक्तिलता बीज सुरक्षित रहेगी। तो भक्तों के संग में भी हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जो प्रजल्प करते हैं, जो भौतिक बातें करते हैं, जिनको भक्ति में रुचि नहीं है, जो हमारे उत्साह को, प्रेरणा को कम करते हैं, जो दूसरों की निंदा करते हैं, जिनको श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं है, जो तरह तरह के राजनीति करते हैं भक्तों के बीच में, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, या जो किसी भी तरह से हमारे दर्शन से, इस भक्ति के सिद्धांत से वो कुछ अलग हट गए हैं। तो ऐसे भक्तों को भी हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन दूर से। संग करना है तो केवल उन भक्तों का जो वास्तव में बहुत सिंसियर हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। देखिए जिस तरह से हमारे धन का, हमारे शरीर का हम इतना देखभाल करते हैं, हमारे धन को अच्छी अलमायरा में बंद करके रखते हैं, बैंक में सेफ डिपॉजिट लॉकर में रखते हैं, बड़े छुपा के ध्यान से रखते हैं, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की सुरक्षा भी हमें उसी तरह से करनी चाहिए। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए किससे संग करना है, किससे नहीं संग करना है। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग भक्ति में आते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि वो बहुत सावधान रहे कि किससे वो ज्यादा मित्रता करे। सबको सम्मान दें, सबको अच्छी तरह से बात करें, लेकिन जहां निकट का संबंध होता है केवल अच्छे सिंसियर भक्तों से करना चाहिए, जिनको वास्तव में रुचि है, जिनके हृदय में सेवा भावना है, जो अपराध करने की वृत्ति से मुक्त हैं। ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे अच्छा, सबसे अच्छी सुरक्षा है, अच्छा आवरण है हमारे भक्ति लता के लिए, जिससे कि ये सब पागल हाथी और अन्य पशु आक्रमण करके इसको काट न दें। तो ऐसे महाप्रभु बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं इस भक्ति लता के बारे में। तो भक्ति लता की सुरक्षा के बारे में उन्होंने ये एक बात कही है कि जंगली पशुओं से बचा कर रखना है, जिसमें से ये हाथी और अन्य पशु ज्यादा खतरनाक हैं, अपराधों से बचना। और एक बात है, और वो है कि कई उपशाखाएं वीड्स वो आती हैं, मालिक को उससे भी ख्याल रखना चाहिए, न केवल पशुओं से सुरक्षा करनी चाहिए उस उसके बगीचे की, लेकिन कभी कभी जंगली घास भी हो जाता है फसल के साथ साथ। आप में से कोई कृषि के बैकग्राउंड से हैं, कोई खेती कर चुके हैं बचपन में? शायद आप में से कितने भक्तों ने खेती की है। आप जानते हैं ना, फसल निकालते समय क्या करना चाहिए, कोई जंगली घास है कि नहीं वो देखना चाहिए ना। अगर उपशाखा है उसको उखाड़ के निकालना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। उसी पानी से वो उपशाखा है, जंगली घास वो बढ़ेगा, आपका फसल नहीं बढ़ेगा। पानी आप दे रहे हैं नियमित तौर से, उसी प्रकार से ऐसे कई उपशाखाएं हैं जो श्रवण कीर्तन के जल से हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, और हमारी भक्ति लता कमजोर हो जाती है। तो हम सोचे, अरे हम तो भक्ति श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भक्ति में बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, हमारी भक्ति लता आगे गोलोक वृंदावन की ओर जा क्यों नहीं रही है। तो सबसे पहले हमें देखना है, पानी दे रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं ठीक से, ठीक है। दूसरी बात, जंगली पशु आ रहे हैं, अपराधों से बच रहे हैं अपने आप, ठीक है बच रहे हैं। तो और क्या है, उपशाखाएं हैं कि नहीं है? तो ये कौन सी उपशाखाएं हैं, जंगली घास हैं, इसका वर्णन महाप्रभु आगे करने वाले हैं, वो कल हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब किसी के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
ध्यान से जाप अवस्था नहीं हो पाता है, भटकता है मन, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए?
अभ्यास से जब मन भटकता है तो अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करके उस मन के जो विचार, हमारा मन जो भटक रहा है उसको खींच के वापस ले आना चाहिए। इसको प्रत्याहार कहते हैं, कि बार बार मन को खींच के लेके आना, मन को डिसिप्लिन करना, संयम हिलाना। मन तो इधर उधर भागता है, मन का स्वभाव है इधर उधर भागना, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करके हमें सोचना, नहीं मुझे जप करना है। हम जप कर रहे हैं, कल कुछ विचार आया कि अरे इस भक्त ने मुझे क्या बोला, उसने ऐसा क्यों मेरे साथ बात किया, अच्छा नहीं किया उसने, तो ठीक है मैं उसको ऐसे बोलूंगा कल। तो उस समय जैसे ही हमारा मन ऐसे चीजों पर जाता है, हमको सोचना चाहिए नहीं बंद करो ये बात को, काट दो। उसी समय उस विचार को काट देना चाहिए, नहीं ये हरिनाम के अलावा मेरा मन किसी भी अन्य वस्तु के ऊपर केंद्रित नहीं करूंगा मैं, और दृढ़ रहना, सुदृढ़। और जैसे ही हमें पता चलता है कि मन कहीं दूसरे विषय के ऊपर गया है, उस विचार को काट के फिर से भगवान के नाम के ऊपर लाना है। तो यह अभ्यास। और दूसरा है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय श्री प्रभुपाद सारे वैष्णव आचार्य वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हरि नाम लेने में आप रुचि दीजिए। हरि नाम से ही प्रार्थना कर सकते हैं, हरि नाम प्रभु, कि हम आपका नाम लेने के लिए योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है, वो शक्ति वो बुद्धि नहीं है हमारे अंदर, कृपया आपका नाम लेने में हमें मदद कीजिए, आप कृपा कीजिए कि आपका नाम हम ले पाए। और तीसरी बात, जो अच्छा हरि नाम लेने के लिए उचित है वो हमें करना चाहिए। सिंपल चीजें, सरल चीजें हैं, ज्यादा लेट रात को मत खाइए, भर पेट खा के हम सो जाएंगे, लेट लेट सो जाएंगे तो नींद आएगी। ये हमारी संस्था में एक बहुत बहुत बड़ी बीमारी है। कौन सी बीमारी आप जानते हैं? नहीं नहीं, प्रसाद, जब के समय सो जाना, आपने देखा है ना, अनुभव भी किया है। आप जपा के समय इधर उधर देखिए, एक बार देखिए बस, कितने लोग जागे हुए हैं, जगे हुए हैं, कितने लोग सोए हुए हैं। जब के समय सोना, देखो कितना समय बर्बाद हो जाता है। तो सबसे अच्छा समय है दिन में, जिसमें हम भगवान का नाम हमको लेना चाहिए, हम सो जाएं, तो कितने दुर्भाग्य की बात है। इसलिए अब मंदिर में लाइट चालू कर दी है, सब अंधेरा है तो सबको आराम से सोने के लिए संधि मिल जाती है, कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं। अब कम से कम लाइट है, आदमी शर्मिंदा होकर रहेगा, लोग देखेंगे हम सो रहे हैं, लाइट चालू है। और रोशनी से, एक मंदिर में एक भक्त बता रहे थे, जब हमको बताया कि देखो आप यहाँ अंधकार में सब लोग जप कर रहे हो, सब मस्ती से सोए हुए हैं, कहा कि लाइट चालू करो। तो दो दिन लाइट चालू किए तो मंदिर के प्रेसिडेंट आके बोलने लगे, भक्त लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो लाइट जो है आंखों में लग रहा है। अब देखिए उनके उनके विचार देखिए, आंखों में लगा, क्यों आंखों में लगेगा, जब नींद आती है तब हमको डिस्टर्ब करता है लाइट, है ना, मतलब वो सोना चाहते हैं, वो सोना चाहते हैं, इसलिए वो उनको लाइट से तकलीफ हो रही है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमें भगवान के नाम में रुचि लेने के लिए उस समय बैठना चाहिए। तो जो अनुकूल है भगवान का नाम लेने के लिए, उस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। रात को जल्दी सोना, जल्दी उठना, रात को कुछ भारी भोजन नहीं लेना, प्रसाद नहीं लेना, और बैठते समय भी सही बैठना। कई बार भक्त लोग तरह तरह के पोज में बैठते, मुद्रा में बैठ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नींद आसानी से आ जाती है। अगर जप करने के लिए बैठना है तो सही ऐसे अच्छी तरह से बैठ के जप करना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधा करके ऐसे बैठ जाएंगे या ऐसे हाथ करके बैठ जाएंगे। हमने देखा है कि जो भी ऐसे बैठते हैं, बस समय की बात है, फिर वो सो जाते हैं तरह तरह से। तो अच्छी तरह से बैठना चाहिए। आपने प्रभुपाद के जप के टेप में सुना होगा ना, प्रभुपाद जप कर, हरे कृष्ण सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। मतलब कोई भक्त ऐसे वैसे बैठे होंगे उस समय, तो उन्होंने देखा, तुरंत उनको डांटा कि ठीक से बैठो। तो ऐसे भी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे भक्ति में प्रगति करने में हमारे लाभदायक हो जाए। और इसके बारे में हमें बातचीत करते रहना चाहिए कि हमारा जप कैसे चल रहा है, जप को कैसे सुधारा जाए। जो लोग अच्छा जप करते हैं उनके साथ में बैठ के हम जप करें, ऐसे संग में सब लोग बाजू में सो रहे हैं और हम अकेले बैठे तो हमें सारे हमें भी नींद आ जाती है, है ना। तो इसलिए इस सब जप के ऊपर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। सुबह का समय सबसे अच्छा समय है, और भगवान से तीव्रता से प्रार्थना करके हमारे जप को हमें सुधारना चाहिए।
गोलोक वृंदावन और इस वृंदावन में डिफरेंस?
गोलोक वृंदावन में और इस वृंदावन में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी भेद करने के लिए इसको भौम वृंदावन कहते हैं। है एक ही, लेकिन इस होम गोलोक वृंदावन को हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि इस धाम के ऊपर भी माया का आवरण है। जब तक हमारी दृष्टि पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है, तब तक ये माया का आवरण हमारे दृष्टि को ढक लेगा। सच्चे वृंदावन को हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मौन, तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। कब मेरा मन जो है विषय भोग की भावना से शुद्ध हो जाएगा, ताकि मैं वृंदावन को अपने वास्तविक मूल रूप में देख पाऊंगा, दर्शन कर पाऊंगा। हाँ जी, हाँ, कोई भी आसक्ति हमारे मन में हो भी कोई बात नहीं, जो है सो है, बुद्धि से भी उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम केवल अच्छी तरह से हमारी भक्ति करें और नियमों का पालन करें, तो ये सारी आसक्ति कट जाएगी, छूट जाएगी। मूल चीज है कि कृष्ण के प्रति आकर्षण अगर हमारे मन में उत्पन्न हो गया, तो अन्य चीजों के प्रति आसक्ति और आकर्षण कम हो जाएगा। ये हमारा मूल सिद्धांत है कि एक चीज से आसक्ति हटानी है तो दूसरे श्रेष्ठ वस्तु में उस आसक्ति को स्थानांतरित करना चाहिए। किसी भौतिक चीज से आसक्ति उठाने के लिए अगर कृष्ण में हम आसक्ति नहीं निर्माण करते हैं, तो ये संभव नहीं है। ऐसा वैराग्य जो है वो टिकाऊ नहीं होगा। जो सच्चा वैराग्य है, सच्ची निराशक्ति, वो है जो कि कृष्ण में आसक्ति करने से उत्पन्न हो जाती है। जो योगी ज्ञानी लोग हैं वो कृष्ण से आसक्त नहीं है, परंतु दुनिया से निराशक्त होने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए उनका वैराग्य जो है वो टिकता नहीं है। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के बाद भी उनका पतन फिर से यहां पर हो जाता है। इसलिए हमारे लिए सबसे अच्छा साधन वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए है कृष्ण के प्रति ज्यादा आकर्षित होएं, ज्यादा भजन करें, ज्यादा जप करें, ज्यादा सत्संग में आएं, ज्यादा वैष्णवों की सेवा करें, ज्यादा प्रभुपाद की किताबों को पढ़ें। इससे ऑटोमेटिक खुद ब खुद निराशक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, आखिरी प्रश्न।
अगर कोई जप करते समय सेवाओं के बारे में सोचे, सही है?
अगर जप करते समय कोई सेवा के बारे में सोच रहा है, वो भी उतना ठीक नहीं है। जो भी हम सेवा करते हैं वो सही ढंग से अच्छी तरह से करना चाहिए। मान लो कि हम कोई रसोई कर रहे हैं भगवान के लिए राजभोग बना रहे हैं, लेकिन मन कहीं और है, दूसरे सेवा में है, तो हम कैसे भी काटेंगे, कुछ भी करेंगे, नमक डालना भूल जाएंगे, ये करना, लापरवाही हो जाएगी, तो वो सेवा अच्छी तरह से होगी कैसे? अगर किसी सेवा को अच्छी तरह से करना है तो उस कार्य में पूरा हमारा मन केंद्रित होना चाहिए, नहीं तो वो सेवा अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो ठीक उसी तरह से जब हम जप कर रहे हैं तो हमारा मन केवल हरिनाम के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। अन्य कोई भी विचार हो, भले वो सेवा के विचार भी क्यों ना हो, उनको मन से निकालने चाहिए। केवल हरि नाम, जप के समय केवल भगवान का नाम ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री गौर निताय की जय। गौर प्रेमानंदे।
आपका है क्या?
तो मेरा पास दे दीजिए, वो तो आएगा थोड़ी देर बाद। तो और एक तो था, पता नहीं कहाँ गया। कल ठीक है,
अरे पेन अरे
ठीक है, मैं याद करता हूँ।
और ये किसी माता जी ने देगी।